हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करीब 15 मिनट बाद ही विहा बाथरूम से बाहर निकली। उसने जल्दी से अपने बालों की हाई पोनीटेल बनाई और फिर वॉश बेसिन के सामने जाकर कुछ पानी के छींटे अपनी गर्दन और माथे पर मारते हुए गहरी सांस लेकर जल्दी से वार्म अप करते हुए बोली, अब देखना पतिदेव, मैं आपको कैसे उल्लू बनाती हूँ। वो जल्दी से बेड के पास गई और फिर दो बार जोर जोर से ताली बजाते हुए बोली, वेदांत निमानी, तुमको आज ऑफिस नहीं जाना है। इतनी देर तक बिल्कुल किसी गधे की तरह सो रहे हो। वेदांत अपने कान के करीब इतनी तेज ताली की आवाज सुनकर घबरा गया और जल्दी से दूसरी तरफ खिसक गया। वो बेड से लगभग गिरने ही वाला था कि उसने जल्दी से बेडशीट को कसकर पकड़ लिया और फिर अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। सामने वेहा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी, जैसे वो बहुत ही ज्यादा दौड़ कर आई हो। उसे ऐसे हांफते देखकर वेदांत ने गहरी सांस ली और अपना सर पिलो पर टिकाते हुए कहा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो किसी चुड़ैल की तरह। वेहा ने एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, एक बार टाइम देखना पतिदेव। वेदांत ने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा और उसमें 8 बजे देखकर वो जल्दी से उठकर बैठ गया। गॉड, मुझे ऑफिस जाना था। फिर अचानक ही उसे कल रात जो हुआ वो याद आया और वो बेड से उठकर विहा के करीब बैठते हुए बोला, और यू टोमैटो, मैंने तुम्हें कल कहा था मेरी चीज़ों से दूर रहना। तुमने मेरे कपबोर्ड का क्या हाल किया था? और तुम ये बताओ, तुम पर्दों के साथ कौन सी होली खेल रही थी? उनमें इतना पाउडर क्यों लगा हुआ था? हर चीज़ तुम इतनी कैसे बिगाड़ सकती हो? मुझे लगा था सिर्फ तुम्हारी बातों में बचपन है, लेकिन नहीं, तुम किसी 5 साल के बच्चे की तरह चीज़ें तोड़ती हो। मेरा फेवरेट वास तोड़ रखा था तुमने। क्या तुम यहाँ किसी के साथ कबड्डी खेल रही थी? वेहा, जो उसे डराने की फिराक में थी, उसकी इतनी धमकी सुनकर बिल्कुल भीगी बिल्ली बन चुकी थी। उसने अपने चेहरे पर पाउट बनाते हुए कहा, वो तो मैं मेकअप करना सीख रही थी। वेदांत की आंखों में कन्फ्यूजन आ गया। क्या तुम्हें मेकअप करना नहीं आता है? फिर उसने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे से पूछा, और वास का क्या कर रही थी तुम? वेहा ने अपने निचले होंठ को काटते हुए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो मैंने देखा था कि ताज़ा गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है। वेदांत ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मेरी माँ, उसके लिए गुलाब जल होता है। तुम्हें मेरा इतना खूबसूरत गुलदस्ता तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तुम उसमें से सीधे फ्लावर निकाल लेती। वेहा ने एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए कहा, एक्चुअली मैं फ्लावर ही निकाल रही थी, लेकिन वो गिर गया और टूट गया। आई एम रियली सॉरी, मैं नया खरीद लूंगी। वेदांत ने एक बार फिर गहरी सांस छोड़कर कहा, और पर्दों के साथ क्या कर रही थी? वेहा ने रोने वाला फेस बनाकर कहा, वो मैं वहाँ बैठकर मेकअप कर रही थी और मैं अलग अलग स्टाइल ट्राई कर रही थी, जिसकी वजह से बार बार मुझे फाउंडेशन चेंज करना पड़ रहा था, तो मैं उसे पर्दे से अपना चेहरा पोंछ रही थी। वेदांत का मन किया कि वो विहा का दिमाग खोलकर देखे कि उसके अंदर सच में दिमाग है भी या सिर्फ भूसा भरा हुआ है। वेदांत को लग रहा था कि उससे बहसबाजी करनी भी फिजूल है। उसने वापस अपनी बेड की तरफ मुड़ते हुए कहा, कल रात को मैंने पूरा कमरा साफ किया है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, तो आज मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता हूँ। फुल लीव तो नहीं ले सकता, लेकिन हाफ डे लीव ले रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। दोपहर से पहले वापस इस कमरे में कदम मत रखना। दोपहर को जब मैं ऑफिस जाऊँ तब तुम यहाँ आ जाना। निकलो अभी यहाँ से। विहा बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए अपने कपड़े लेकर वापस बाथरूम के अंदर चली गई। वेदांत भी वापस सो चुका था। वहीं अनाही हाथों में कॉफी मग लिए कमरे में एंटर होती है तो देखती है रूहान बेड पर पसरा अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। हाँ, वो फ्रेश तो हो चुका था, लेकिन उसने कैजुअल वेयर ही पहना था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो आज बाहर नहीं जाने वाला है। अनाही ने उसके पास जाकर अपना गला ठीक करते हुए धीरे से कहा, रूहान जी, आपकी कॉफी। रूहान उसकी आवाज सुनकर एकदम से हड़बड़ा गया और उसका फोन छूटकर उसके मुंह पर गिर गया, जिससे वो करहाते हुए अपनी नाक को सहलाता है और फिर आंखें खोलकर अनाही की तरफ देखता है, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। रूहान उठकर बैठ गया और अनाही के हाथ से कॉफी मग लेते हुए बोला, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है मैडम जी, कोई भी अगर ऐसे अचानक आएगा तो इतना हिचकिचाना नॉर्मल बात होती है, इसमें हंसने जैसा कुछ नहीं था। अनाही ने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर अपना पर्स लेकर एक बार खुद को मिरर में देखते हुए अपने बाल सेट करते हुए बोली, ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, जब मन हो आप खा लेना। इतना बोलकर अनाही तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई और रूहान बस उसे देखता रह गया। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आज कुछ बदला था और वो था रूहान का रूटीन। सुबह उठकर जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाना और ड्रिंक करना, कि आज वो नहीं करने वाला था और शायद ये कई सालों में पहली बार होने वाला था। इसका रीजन रोहान को भी नहीं पता था कि वो क्यों ये सब कर रहा है। उसके कानों में बस कल वाली अनाही की एक ही बात घूम रही थी कि उसे किसी और का उसके कमरे में आना पसंद नहीं है और वो बटलर वापस नहीं आना चाहिए शुगर की केयर करने के लिए। हाँ, रोहान उसको थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए अपना मॉर्निंग रूटीन कुर्बान कर रहा था बिना उसे बताए, जिसके लिए वो ये कुर्बानी देने वाला था। अनाही ने वेदांत के कमरे के सामने जाकर दरवाज़ा नॉक करती है। विहा, जो तैयार हो रही थी, वो जल्दी से कमरे के दरवाजे के पास आई और दरवाज़ा खोलते ही सामने अनाही को देखकर खुश होते हुए उसके गले मिलकर बोली, वाओ ब्यूटीफुल, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग। अनाही ने मुस्कुराकर विहा के बालों को सहलाया और फिर कहा, गुड मॉर्निंग, वेदांत जी ऑफिस नहीं जा रहे हैं आज, मैं ऑफिस से जा रही हूँ। विहा ने गंदा समूह बनाते हुए कहा, ओ सुअर की औलाद, सो रहे हैं, देखो कितने गंदे आदमी हैं, इतनी सुबह तक कोई सोता है भला। अनाही ने थोड़ा घबरा कर कहा, कहीं उनकी तबीयत तो नहीं खराब है, क्योंकि यूजुअली तो वो कभी ऑफिस के लिए लेट नहीं होते हैं, मैं पिछले एक साल से जानती हूँ उनको। विहा ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता, आप पूछ लो उनसे, मुझे तो मना किया है कि मैं उनको उठा नहीं सकती हूँ। अनाही ने मजबूरन नामे सिर हिलाया और फिर अंदर जाकर वेदांत के पास धीरे से बोली, वेदांत जी उठिए, आज आपके ऑफिस नहीं जाना। वेदांत ने झुंझलाकर अपनी आंखें खोली और सामने अनाही को देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तुम्हारी बहन, इसने मुझे तंग कर रखा है। रात को मैं करीब 2 बजे के आसपास सो पाया था और बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं दोपहर को आऊँगा, तब तक तुम संभाल लेना, बाकी मैंने जूली से बात कर ली है, ठीक है। अनाही ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही विहा भी उसके पीछे पीछे बाहर चली गई ताकि वेदांत से उसे कुछ सुनने को ना मिले। वहीं रोहान अपनी कॉफ़ी खत्म करके अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देता है। बालकनी पर सोफे पर कंफर्टर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखा था। सामने की टेबल पर भी ताज़े फूल थे। बालकनी के पर्दे बदल चुके थे, शायद अनाही ने बदले थे। वहाँ अच्छे से झाड़ू भी लगी हुई थी। रोहान ने अपने कमरे की तरफ नज़रें दौड़ाईं। उसका कमरा भी थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा था, शायद ज़्यादा सेटल। रोहान सोफे पर बैठकर गुलदस्ते में रखे ताज़े फूलों को अपनी उंगलियों से छूकर देखने लगा। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अनाही ने भी इन फूलों को अपने हाथों से छुआ होगा। उसने होठों को भींचते हुए अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया। तभी उसकी नज़र बाहर खड़ी अनाही पर पड़ी, जो ड्राइवर से कुछ बातें कर रही थी। शायद ड्राइवर को मना कर रही थी उसे ड्रॉप करने के लिए। ड्राइवर ने भी उसकी बात मान ली और अनाही तेज़ी से अकेले ही घर से बाहर चली गई।
उसे करीब 5 मिनट पैदल चलकर जाना था एक टैक्सी के लिए। ये देखकर रोहान को गुस्सा आ गया और वो तुरंत ही बालकनी से उठकर बाहर की तरफ तेज़ कदमों से बढ़ गया।